Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakti Samita Vasalavi Matao Isnivai Vehino Aap Sarubandhu Taittiriya आरण्यक के माध्यम से प्रसंग चल रहा है ओम की उपासना का। किस प्रकार से ओम की उपासना की जाए, इसको लेकर के यहां पर ओम के स्वरूप का निर्वचन कर रहे हैं। और ओम के स्वरूप का निर्वचन करते हुए उसमें उपाधियों की कल्पना को लेकर के ओम का निरूपण कर रहे हैं। अब संकेत यहां पर किया, इस ओम की उपासना करनी है तो ये संकेत कर दिया ओम क्या है, तो कहा ये ब्रह्म रूप है। ओम को ही ब्रह्म शब्द से कहा, और ब्रह्म शब्द से कह करके उसे सर्वाधिष्ठान का संकेत किया। यह ओम ब्रह्म है और क्या है, तो संपूर्ण जो कुछ भी है उस सब का वह अधिष्ठान है। अधिष्ठान है तो अधिष्ठान का मतलब क्या, जिसमें भिन्न पदार्थों की कल्पना होती है और वह कल्पना कल्पायमान होते हुए जिसमें विलीन हो जाती है, उसी को अधिष्ठान शब्द से कहते हैं। तो इस प्रकार से यह ओम में ही सारी कल्पना और कल्पित होते हुए उसमें कल्पायमान रहते हुए उस ओम में ही उसका विलय हो जाता है, इसलिए ओम ही सर्वाधिष्ठान है। ऐसा संकेत करते तो ओम की उपासना कैसे करनी है, तो उपाधियों को लेकर के उपासना करनी, और उपाधियों को लेकर के उपासना करते हुए उन उपाधियों को क्रम से लय भाव में ले जाना है। जब उनका लय करते जाएंगे तो क्रम से जब लय होगा तो अंत कहां पर होगा, तो कहने लगे अधिष्ठान मात्र में। और जब अधिष्ठान मात्र में लय हो जाएगा तो वही क्या होगा, का स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए ओम की उपासना, ऐसा यहां संकेत किया। अब उसी ओम को लेकर के उसमें जो है मात्राओं को लिया, और मात्राओं में भी जो है व्याहृतियों को लिया, और उन व्याहृतियों में क्रम से समस्त जगत रूप की कल्पना करते हुए, समस्त लोकों की कल्पना करते हुए, और समस्त देवों की कल्पना करते हुए, समस्त वेद की कल्पना करते हुए, समस्त अग्नियों की कल्पना करते हुए, उनको एक सीमा तक कल्पायमान रखते हुए, और फिर उनका क्रम से लय करते हुए इस ओम रूपी अधिष्ठान तक पहुंचाने की उपासना का निरूपण किया जा रहा। इसलिए सर्वप्रथम जो उसकी प्रथम मात्रा है, उस मात्रा से होने वाली व्याहृति जो भू है, उस भू का ही स्वरूप बतलाते हुए या उसमें जो कल्पना है और जो कल्पायमान है उसका निर्वचन करते हुए यहां संकेत किया। और संकेत करते हुए कहने लगे कि जो यह भू की व्याहृति है, उस भू रूप व्याहृति में ही यह समस्त लोक है, और उस समस्त लोक के अंतर्गत ही यह व्यष्टि रूप व्यक्ति है, पुरुष है। और जो यह व्यष्टि रूप पुरुष है, उस पुरुष का जो हृदय है, उसका जो हृदय है, वह हृदय जो है उस हृदय के अंतर्गत जो आकाश है, और उस आकाश में भी क्या है? तो कहा मनोमय पुरुष है। और मनोमय जो पुरुष है वो पुरुष कैसा है तो उसका निर्वचन करते हुए बतलाया, कहा वो अमृत स्वरूप है और वो हिरण्य वर्ण का है, ऐसा संकेत किया। तो हिरण्यमय अमृत स्वरूप और मनोमय इस हृदय के अंतर्गत पुरुष की कल्पना की और उस कल्पना को कल्पायमान रखते हुए संकेत करते हैं कि यह जो पुरुष है जो इस हृदय के अंतर्गत है वह पुरुष कैसा है। तो इसका तात्पर्य यह बतलाया कि वह हिरण्यमय है, मनोमय है, अमृत स्वरूप है। तो जब मनोमय कहा तो मन की प्रचुरता है जिसमें, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई कहे अमुक व्यक्ति है और उसके पास में धन का प्राचुर्य है, तो धन की प्राचुर्यता से उसे हम क्या कह देंगे? कहा धनी। क्या कह देंगे? धनी। लेकिन धन की प्राचुर्यता से धनी कह देने से वो धन तो नहीं हो गया। धनी कह देने से, धन की प्रचुरता होने से हम उसका प्रयोग तो धनी शब्द से करते हैं और उसका बोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है कि वो धन नहीं है किंतु क्या है? धन का स्वामी है, धन वाला है, यही तो कहोगे। ठीक इसी प्रकार से मनोमय, मनोमय है, मन की उसमें प्रचुरता है, इसलिए वो कैसा है? का मन वाला है। क्या कहोगे? हैं? मन वाला है। या दूसरा शब्द जैसे धनी कहते हो तो क्या कह दोगे? मनस्वी। क्या शब्द प्रयोग कर दोगे? मनस्वी, है ना? तो अब जैसे धनी वैसे मनस्वी, तो वह मनस्वी है। अब मनस्वी है तो मनस्वी होते हुए क्या करने वाला है? तो कहने लगे उस मन की जितनी भी क्रिया है वो उसको ही केंद्र मान करके हो रही, धन की जितनी भी क्रिया है उस धनी को लेकर के ही होगी। धन का अर्जन करना है, धन का व्यय करना और धन से लाभ लेना, धन से हानि होना, वो किसको होगी? वो धनी को होगी। वैसे ही यहां पर संकेत करते हैं कि वह मनुष्य ही कैसा है, तो कहने लगे सारी की सारी कल्पना करने वाला, कल्पना का लय करने वाला है कौन है? कहा वह मनुष्य। धन रहे फिर धन चला जाए, लेकिन धनी कहीं आता जाता नहीं, धनी तो रहेगा, उसमें धन का होना होगा, धन का अभाव होना होगा, लेकिन धनी तो धनी रहेगा, पुरुष विशेष रहेगा। ऐसे ही मनुष्य जो मन और मन से होने वाले कार्य होने पर भी और मन मन के न रहने पर, मन के कार्यों का अभाव होने पर भी जो पुरुष है वो रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो रहेगा। तो अब यहां पर जो संकेत कर दिया कि वह कैसा है? मनोमय। तो मनोमय का अर्थ क्यों समझ लें? मन क्या है? मन एक साधन है, जैसे धन एक साधन है और धन रूपी साधन को लेकर के उसके सारे व्यवहार होते हैं और तद अनुकूल उसको उपाधि मिलती है, वैसे ही मन एक साधन है, उस मन को लेकर के उसके सारे व्यवहार होते हैं और उस मन को लेकर के ही वह मनुष्य कहलाता। ये संकेत अब जब इस प्रकार का है तो ये संकेत कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ फिर संकेत क्या किया? कहा मनस्वी वह जो पुरुष है, मन रूपी साधन वाला है, मन की जिसमें प्रचुरता है, ऐसा दूसरा विशेषण दिया वो अमृत है। तो अमृत का मतलब क्या? धन के नष्ट होने पर या धन के प्राप्त होने पर धनी में कोई विकार नहीं आया, उसे उपाधि को लेकर के धनी आदि निर्धन आदि कह सकते हो, लेकिन वह पुरुष जैसे का तैसा उसके स्वरूप में कोई विकार नहीं। विकार आया तो किसमें आया? जिससे उसे उपहित किया जाता था, उस उपहित से उसकी अनुपहितता जरूर हो गई। अनुपहितता होने पर वह धनी नहीं कहलाया, निर्धन कहलाया, ये कल्पना हो गई। तो उपहित उपाधि के द्वारा होता, उपाधि जो है वो क्या है, उसमें एक कल्पना विशेष है। तो कल्पना से कल्पायमान था, लेकिन वो कल्पना भी नहीं था, और कल्पना से होने वाला जो कल्पायमान पदार्थ है वो भी वो नहीं, वो सर्वथा उससे असंग है। इसलिए संकेत विशेषण दे दिया मनोमय कहकर के अमृत कैसा है। कहा उसमें अमृत का मतलब है मने भाव और अभाव, यही तो हम समझते हैं। जीवन क्या है? भाव रूप है, और मृत्यु क्या है? अभाव रूप। जहां मृत्यु न हो तो क्या होगा? का भाव रूपता होगी। तो सदा वो भाव रूप है, अर्थात वो सदा सत रूप है। उसमें ये भावाभाव दोनों ही नहीं होते हैं, इन दोनों से वह रहित है। किंतु इन भाव और अभावों की उसमें एक कल्पना मात्र है, ये संग। इसलिए कह दिया वो पुरुष कैसा है, तो अस्मिन है कह लिया हृदय में जो पुरुष है कैसा है, अयम पुरुषा मनोमयः अमृतो। यह जो पुरुष है वो कैसा है? कहा मनोमय होते हुए भी अमृत है। अमृत है माने जिसमें भावाभाव नहीं होता। ये सर कहते हुए फिर कहा हिरण्यमय, यहां कह दिया हिरण्यमय, अन्यत्र श्रुति के अंतर्गत जहां आया मनोमयो अयम पुरुषः भारूपः। क्या कहा है? यह जो मनोमय पुरुष है वो कैसा है? भारूप है। वो भारूप माने प्रकाश स्वरूप है। तो इस प्रकार से यहां पर भी हिरण्यमय शब्द का रूप दे दिया। वो कैसा है? हिरण्यमय है, प्रकाश स्वरूप है। तो ऐसा जो पुरुष, और ये कहां है, तो उसके लिए अकार की जो भू नाम की व्याहृति, उस भू नाम की व्याहृति के अंतर्गत कल्पना की गई कि समस्त लोक, ये जो पृथ्वी लोक है वो समस्त लोक कहां है? कहां? उस भू नाम की व्याहृति है ना, और उस भू नाम की व्याहृति में जो ये समस्त लोक है, उसी लोक के अंतर्गत उसका अंश विशेष अवयव विशेष एक व्यक्ति मात्र, और उस व्यक्ति मात्र का हृदय, क्या कहेंगे? उस व्यक्ति मात्र का हृदय, और उस हृदय के अंतर्गत, हृदय को कमल शब्द से कह दिया, तो उस हृदय रूपी कमल, और हृदय रूपी जो कमल है तो वहीं पर क्या है? कमल कब से कहा? तो कहा उसी में है आकाश। उस आकाश में ही, ध्यान रखना कहां पर है ये, उस आकाश में है, और वो आकाश में है तो कैसा है? तो कहने लगे उसी को हिरण्यमय प्रकाश रूप है। और आकाश शब्द से कह दिया तो आकाश का अर्थ क्या है? तो जानते हो आकाश माने अमूर्त। आकाश का अर्थ क्या है? अमूर्त। उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं। आकार प्रकार से रहित होना, मूर्ति से रहित होना, और मूर्त शब्द का जब अर्थ करते हैं तो न्याय शास्त्र में मूर्त शब्द का अर्थ किया गया क्रिया द्रव्य संयोगित्वम मूर्तत्वम। क्या कहा? क्रिया द्रव्य संयोगित्वम मूर्तत्वम। जहां पर क्रिया का संयोग हो और द्रव्य का संयोग हो, उसे ही मूर्त कहते। यद्यपि नैयायिकों ने आकाश को भी द्रव्य माना, लेकिन वेदांति इसको द्रव्य स्वीकार नहीं करते। तो अब नैयायिकी ये लक्षण करते हैं कि जहां पर क्रिया और द्रव्य का संयोग हो उसे मूर्त कहते। यद्यपि आकाश में ही सारी क्रियाएं हो रही हैं और आकाश में ही जो भी पृथ्वी आदि उसमें गंध आदि गुण मानते हैं वो सब हो रहे, लेकिन फिर भी आकाश इन सब से असंग है। क्या मानते हो? आकाश इन सब से असंग। इसलिए वह कैसा आकाश है तो संकेत किया, अमूर्त रूप है, माने उसकी कोई मूर्ति नहीं। ऐसा समझ लो, माने मूर्ति नहीं तो मूर्ति का मतलब क्या? जिसमें एक आकार विशेष हो, रूप विशेष हो, तो उसे मूर्ति कहेंगे। तो आकार हो और रूप आदि गुण उसमें हो तब उसे जो है हम मूर्त स्वीकार करें। लेकिन यहां आकाश शब्द से संकेत कर दिया कि हृदय में जो आकाश है वो कैसा है, तो आकाश कहके ही बतला दिया, जो गुण धर्मों आदियों से रहित है, आकार आदि से रहित है, और जो असंग है। कैसा है? असंग। तो ऐसे उस आकाश में, और उसी आकाश में क्या कहा? कहा उसी आकाश में अयम पुरुषः, ये जो पुरुष है वो है। कहा कौन सा पुरुष? तब विशेषण दिए। क्या विशेषण दिए? मनोमयः, जो मन उपाधि वाला है, अर्थात मन की जिसमें प्रचुरता। और कैसा है? तो कहा मन की प्रचुरता होने पर भी उस मन की प्रचुरता से भी वो लिपायमान नहीं होता। क्या मतलब उसका? क्यों नहीं होता? कहा अमृत स्वरूप हो, मने वह अमृत रूप है। मने मन तो भावों को उत्पन्न करता है, अभावों को उत्पन्न करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, लेकिन वो कैसा है? इन दोनों से ही रहते हैं, अमृत स्वरूप। और कैसा है? तो ये कह दिया ऐसा कैसे? तो कहा वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये संकेत कर ऐसा वह पुरुष है। और ये सब बतलाते हुए ये भावना करनी है किसके लिए? कहा उपासना के लिए। कहा ये भावना कहां करनी है? तो ओम की जो आकार मात्रा, उस ओम की आकार मात्रा में यह भावना करनी। और ये भावना करते हुए इस भावना को फिर उन्नयन करना है, इस भावना को फिर आगे बढ़ाना है। अब उस भावना को आगे जब बढ़ाना है तो आगे कैसे बढ़े? तो इसके लिए संकेत कर दिया था कि हृदय रूपी कमल और उसमें नाल, ये संकेत किया। अब भावना को बढ़ाना है तो जहां उस कमल में नस नाड़ी रूप अनेक इंद्री रूप छिद्र हैं, उधर जो है उसी में अमृत आदि, वहां पर जो आकाश में विद्यमान है, उस अमृत का जो स्राव हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ है तो स्वाभाविक गति होती है। जो भी द्रवित पदार्थ होता है वो निम्नता की तरफ जाता है। अब वो जो स्राव हमारा इस तरफ हो रहा है, तो यहां उपासना करते हुए, भावना करते हुए क्या करना है? उसका उन्नयन करना है। और उन्नयन करना है तो इसका मतलब है निम्नता से हटा करके ऊर्ध्वता की तरफ उसे करना है। तो वो कैसे होगा? तो कहा उसके लिए चिंतन करना होगा, मनन के द्वारा होगा। वो जो मन की मनोमयता है तो उसी मन के द्वारा होगा, मन के द्वारा चिंतन करते हुए, मन के द्वारा मनन करते हुए। और मन से जब मनन करेंगे तो कैसा मनन करना चाहिए? तब उस मनन की प्रक्रिया को बतलाया, अंतरेण तालुके। क्या संकेत किया? अंतरेण तालुके। अंतर शब्द का अर्थ है यहां दोनों के मध्य में। अब दोनों के मध्य में कौन दोनों की? तो तालु शब्द का प्रयोग कर दिया, दोनों तालुओं के मध्य में। और कहने लगे दोनों तालुओं के मध्य में यह हमारा चिंतन हो। और उन चिंतन होते हुए कहां पहुंचे? तो फिर कह दिया वहीं तालुओं के दोनों के मध्य से होता हुआ, जो उन तालुओं के मध्य में ही ऊपर की तरफ लटका हुआ जिह्वा की तरह से जो मांसपिंड है, उस मांसपिंड को विदीर्ण करता हुआ उसमें से होता हुआ। अब कैसे, तो शरीर की गति का वर्णन कर दिया, ये कैसे होगा, तो सुषुम्ना नाड़ी से ये संकेत किया, तो सुषुम्ना नाड़ी का भी प्रयोग कर दिया। और दूसरी तरफ सुषुम्ना का मतलब है मने मन की सौंदर्यता, और मन की सुंदरता क्या है, मन का अपने लक्ष्य की तरफ गमन करना ही मन की सुंदरता है। अपने लक्ष्य की तरफ जाना ये मन की सुंदरता, तो मन जब लक्ष्य की तरफ जाएगा तो वही सुंदर मन होगा, और सुंदर मन को लेकर के संकेत कर दिया, उसी को सुषुम्ना नाड़ी करके संकेत कर दिया। और वो जब तालुओं के होकर के और कहां से होके जाएगा, तो संकेत कर दिया कि फिर उसका जो है उस तालु में जो लटका हुआ जो मांसपिंड है उससे उसके मध्य से होता हुआ केशांत, केशों का अंतर्थात केशों का मूल भाग, जहां केशों का मूल भाग है उन मूल भाग में पहुंच करके, और फिर मूल भाग में पहुंचते हुए क्या करना है, तो कहने लगे यत्र केशांतौ विवर्तते, जहां से केशों के मूल भाग और मूल भाग से केशों का क्या होता है, पृथक पृथक रूप होता, उनका जो है अलग अलग रूप होता है, वहां ऐसे उस स्थल में पहुंच करके फिर विपोहीय शीर्ष कपाले, शीर्ष कपाले, शीर्ष कपाल जो हमारे सिर में जो कपाल, उन कपालों को विपोहीय माने उनका विपोहन करके विशेष रूप से उनका विदीर्ण, उन्हें विदीर्ण करना, और उनको विदीर्ण करते हुए और इस प्रकार से जब जाता है तब कहने लगे वो चिंतन कहां पहुंचागा, तो भूख से ये चिंतन करते हुए आगे भूखा ही अवयव बतलाया था अग्नि, तो कहां पहुंचेगा, तो कहने लगे फिर वहां से निकल करके और कहां पहुंचता है, तो कहने लगे भू इत अग्नौ प्रतिष्ठति, तब वह भू नाम की विहति के अंतर्गत होने वाला ये क्रियाकलाप ये चिंतन कहां जाकर के पहुंचा, तो कहने लगे अग्नि में, और अग्नि में क्या हुआ प्रतिष्ठते, अग्नि में प्रतिष्ठित हो गया। अग्नि प्रकाश का वाचक है, ऐसे उस प्रकाश में पहुंच गया, लेकिन अग्नि कह दिया क्योंकि भू व्याहरती है तो लोक रूप से ही ले लिया, अभी सर्वांगीणता उसमें ज्ञान की नहीं कह रहे, तो इस प्रकार से उसे बतलाते हुए और फिर बतलाया कि भोव इत, फिर आगे की प्रक्रिया बतलाते हैं कि इसी प्रकार से फिर अनचिंतन किया, फिर उकार की मात्रा को लेकर के चिंतन करते हुए, और उकार की मात्रा का जब चिंतन करते हुए इसी प्रकार से अनचिंतन हुआ, तो उकार मात्रा का लोग क्या बतलाया था अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष का अंतरिक्ष रूप से चिंतन करता, क्योंकि अग्नि जब सिर कपाल फोड़ के निकला तो अग्नि में प्रतिष्ठित हुआ, वह जो तेज था वह जो अग्नि थी वो अग्नि फिर क्रम से जो है उकार मात्रा का अनचिंतन करते हुए भुवा नाम की व्याहृति का अनचिंतन करते हुए और अंतरिक्ष के अंतर्गत क्या चीज विद्यमान है, तो कहने लगे वायु, उस वायु में जाकर के वह प्रतिष्ठित हो गए, और वायु क्या है, तो सारे अंतरिक्ष में व्याप्त है। वायु कहां है, सारे अंतरिक्ष में वायु व्याप्त, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वह वायु में पहुंचा वायु में प्रतिष्ठा हुई तो सारे अंतरिक्ष में उसकी व्याप्तता हो गई। इस प्रकार से यहां कर बतलाते हुए और फिर इसी प्रकार से क्रम से आगे जो है मकार की मात्रा की व्याहृति जो स्व, उस स्व व्याहृति का अनचिंतन करते हुए उसका जो देवलोक और उसमें द्वितीय लोक करके बतलाया था आदित्य, तो अब जो है वो वायु जो है वो वायु जब अंतरिक्ष में पहुंची, अंतरिक्ष में पहुंच करके फिर क्रम से कहां पहुंची, कहा आदित्य लोक में उसकी प्रतिष्ठा हो गई, और आदित्य लोक में जब प्रतिष्ठित हो गया तो तीनों मात्रों का ये रूप बतलाया। उसके पश्चात कहते हैं महानाम की विहरति। अब आदित्य लोक से ऊपर कौन सा लोक है, तो कहने लगे अब किसको बताएं, वही लोक है। उसके बाद तो फिर महानाम की विहरति कहा। अब महानाम की आदित्य लोक से वहां जहां परम प्रकाश था, और आदित्य का स्वरूप क्या है,